بند پستک دوسری لیکچر نمبر 11 نمہ سدھے
प्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबंधम् नमामि।
यह श्री भगवान भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें दूसरी पुस्तक में द्वितीय जो स्थिति बंधाधिकार है उसको देखते हुए हम पृष्ठ संख्या 52 पर आ गए, 52। यहाँ अपना काल की चर्चा चल रही है, बंध का काल, जघन्य काल और उत्कृष्ट काल। उसमें हम उत्कृष्ट बंध का काल देख रहे हैं मार्गणाओं में। विभंग ज्ञान में हमने देखा था, फिर दोबारा पढ़ेंगे यहाँ से, एक पैराग्राफ वैसे हुआ था अपना ये। तो विभंग ज्ञान में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल ओघ के समान है, क्योंकि विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। साधन वाले को भी अपन उत्कृष्ट बंद करने वाला मिथ्या दृष्टि है, तो ओघ के समान इसमें घटित होता है।
एक
समय और अंतर्मूल अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागरों को में, यानी उत्कृष्ट का बंद किया, फिर अनुत्कृष्ट का किया और फिर मर गए। विभंग ज्ञान की मार्गना बदल गई, नहीं रहा।
उत्कृष्ट का तो ठीक है, लेकिन अनुत्कृष्ट में आप लोगों को सोचना पड़ता है।
उसी में सोचना पड़ता है।
अनुत्कृष्ट में सोचे तो देखते, एक समय जो घटित हुआ वो अपन हमेशा मरण के पीछे ले लेते हैं।
यहाँ मार्गना बदलने, मार्गना बदलने से भी हो सकता है।
विभंग ज्ञान में मार्गना बदल गई, मतलब उसका विभंग ज्ञान टूट गया,
विभंग ज्ञान टूट गया,
अवधि ज्ञान खत्म हो गया।
हाँ, ऐसा ले
सकते।
समय दर्शन हुआ, परंतु वो उत्कृष्ट का एक समय के लिए उत्कृष्ट करके फिर दूसरे समय में उसको समय तो होने की ख्वाहिश नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए मरण की अपेक्षा लगेगी, इसमें मरण की अपेक्षा लगी। विभंग ज्ञान छूट गया और क्या कहेंगे, मिथ्या तो में रहते हुए विभंग ज्ञान छूट गया। मनुष्य 3 इंचों में तो छूट ही सकता है,
लेकिन अगर उसी में छूट गया,
वही ना, वही छूट गया उसका। मिथ्या तो में रहते हुए, मिथ्या तो में रहते हुए विभंग ज्ञान छूट गया, बस इतना ही लेना। यानी वो मार्गण किसी भी प्रकार से वो मार्गणा नहीं रही। तो अनुत्कृष्ट का एक समय होता है और अनुत्कृष्ट लगातार चले तो कितने काल तक चलेगा, तो 33 सागरों का। ये कहाँ का लेना अश्विन भाई? सात चंद्र। आयु कर्म का काल ओघ के समान है, यानी उत्कृष्ट का एक समय है, अनुत्कृष्ट का जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मुख है। आयु में मार्गणा बदलने की बात नहीं लगाई हमने, विभंग ज्ञान छूट गया। नहीं, परंतु विभंग ज्ञान छूटने की अपेक्षा ऐसा नहीं गया, आयु का बंधन चालू हो गया, विभंग ज्ञान छूट गया, ऐसा नहीं हुआ। आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में 7 कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट स्थिति बंध का भी अंतर्मूर्त, एक समय नहीं कहा, अंतर्मूर्त तक लगातार गया। समय दृष्टि है, वो कब करेगा उत्कृष्ट स्थिति बंध, मिथ्यात्व के सम्मुख है तब। तो उसका अर्थ लगातार अंतर्मुहूर्त तक होता है होगा अंतिम वो स्थिति बंध का जो कुछ उतना का उतना स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त तक होता है उसकी अपेक्षा लिया होना चाहिए।
मतलब वो एक समय के लिए बंद करके नीचे नहीं गिर सकता
यानी जो बंद कर रहा था तो लगातार अंतिम अंतर्मुहूर्त में करता रहा ये बात होती है। अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है ये तो हमेशा देखा था हमने और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागरों में यानी पहले औपशमिक हुआ फिर वेदक हुआ फिर शायिक हुआ तो उसका अनुत्कृष्ट का चला था। आयु कर्म का काल उग के समान है
यहाँ पर भी जैसे अनुत्कृष्ट स्थिति का बात कर रहे हैं हम लोग तो जघन्य काल एक समय लेके अंतर्मुहूर्त भी है
एक समय का
एक समय ले सकते जैसे ऊपर
नहीं 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 यहाँ तो अनुत्कृष्ट वाली हुआ अंतर्मुहूर्त होती है अनुत्कृष्ट का एक समय करके देखो यहाँ उत्कृष्ट कब होगा मिथ्या तो कैसे होगा
मिथ्या
तो उत्कृष्ट पूर्वक अनुत्कृष्ट कैसे होगा नहीं समझ में सम्यक तो प्राप्त करते ही अनुत्कृष्ट शुरू हुआ तो एक समय में तो मर नहीं सकता सम्यक तो प्राप्त हुआ और एक समय में मरा ऐसा तो नहीं होगा तो इसलिए अनुत्कृष्ट का एक समय नहीं घटित हुआ। मनपरे ज्ञान में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है यहाँ पर भी वो मनपरे ज्ञानी असंयत के सम्मुख चौथे गुणस्थान के सम्मुख वाला लिया था हमने स्वामित्व में देखा था इसको और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण है क्या क्या फिर से हाँ जैसे हमने ऊपर लिया था मतिशुत अवधि में वो तो हाँ अभी जैसे हमने मतिशुत अवधि में लगाया है वैसे यहाँ पर भी लगा यानी लगातार उतना का उतना स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त तक परिणाम उतना नहीं रखो अंतर्मुहूर्त तक परिणाम हो गए तो फिर भी उसकी जो रेंज है उसमें स्थिति बंध उतना का उतना होगा। अरविंद भाई अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है ऐसा भी हो सकता है ना श्रेणी में लास्ट में मनपरिज्ञान किसी को प्रकट हुआ मैंने अवधि ज्ञान भी प्रकट होता है ऐसा देखा था अंतिम समय में किसी को श्रेणी में प्रकट हुआ और श्रेणी चढ़ गया ऊपर केवल ज्ञान हो गया तो हो सकता है कि नहीं हो सकता अदरवाइज अनुत्कृष्ट का एक समय कैसे कहेंगे क्योंकि उत्कृष्ट का वह मिथ्या असंयत के संभव
मनपरे की बात करें अवधि ज्ञान
वही तो मैं कह रही
हूँ तो मनपरे
कब होगा
जो उत्सव छड़ी से गिरा उसको प्रकट और मर गया एक समय के लिए प्रकट हुआ
प्रकट हुआ और मर गया नहीं मैं तो उसकी बात कर रही थी बारहवें गुणस्थान के अंत में प्रकट हुआ और केवल ज्ञान हुआ नहीं पर वहाँ बंध नहीं है ना वो बारहवें में बंध नहीं दसवें में प्रकट हुआ कहेंगे हम
दसवें मर नहीं सकता उत्सव भी लेना पड़ेगा
मर नहीं सकता
छूट नहीं सकता
पर बंद बंद तो रुक सकता है ना बंद तो रुक सकता है
एक समय के लिए बंद हुआ
बंद रुका प्रकट हुआ मनपरे ज्ञान श्रेणी में प्रकट हुआ एक समय के लिए अनुत्कृष्ट बंद किया मनपरे ज्ञान रहा परंतु बंद रुक गया ये मेरा ऐसा हटपटा सोचना है ये तो मैं अलग अलग मैं क्या हो सकते हैं उसकी बात सोच रही हूँ क्योंकि एक समय में मनपरे ज्ञान नष्ट तो नहीं होगा
श्रेणी में लेना
श्रेणी में प्रकट हुआ बंद किया और उसका बंद हो गया फिर ऊपर चढ़ गया ऊपर चढ़ गया
गिरा के इसको
मार देना अरे क्यों क्यों क्योंकि विशुद्धि में प्रकट होगा कि नीचे गिरते समय प्रकट होगा ये हमने कल उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया था, अंतर मन परि ज्ञान का अंतर
नहीं, ये लिखा है तीन सौ पैंतीस पेज पर लिखा है, बात हम बोले मन परि ज्ञान की
थ्री थर्टी फाइव
पर बिल्कुल जो आप पढ़ रहे हो वही लिखा है।
अच्छा अच्छा देख ले, उत्कृष्टि बंद काल प्ररूप। अच्छा फिर दोबारा लिए क्या उन्होंने? अच्छा प्रकृतियों में लिए,
एक विशेषाथ की
एक एक में 335 विशेषाथ की छठी लाइन
जो मन पर
देखो देखो निकालने दो सबको। 335 पेज नीचे का पैराग्राफ विशेषाथ का पांचवी लाइन, जो मन पर ज्ञानी जी उपशम श्रेणी से उतरते समय अपने अपने स्थान में एक समय तक पांच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों का बंध करता है और दूसरे समय में मरकर देव हो जाता है। अच्छा अच्छा उसके मन पर ज्ञान छूटने की सवाल ही नहीं है, वो बंध नहीं कर रहा था और बंद कर रहा था और मर गया, बस बस इतना ही।
यानी
मन पर ज्ञान प्रकट हुआ ऐसा नहीं कहे ना, वो तो था ही बंद, तो वो बंद नहीं कर रहा था, अब बंद किया एक समय के लिए और फिर देव में उत्पन्न। तो उक्त प्रकृतियों के स्थिति बंध का एक समय प्राप्त होता है, यानी प्रकृति बंध में जो स्थिति बंध की बात की हम यहाँ पर बंध का काल उसी अपेक्षा से घटित कर सकते हैं। यानी मन परे ज्ञानी ग्यारहवें में अबंध था, दसवें में आया तो ज्ञानावरण आदि का बंद किया, छह प्रकृतियों का बंद किया, एक समय में मरकर देव हुआ तो उसका मन पर ज्ञान छूट गया। तो हमने एक
ज्ञान नहीं छूटा,
सर क्यों नहीं छूटा मरने पर?
अच्छा वो देव नहीं गया,
मार्ग ना बदल गए ना,
ये सिर्फ मन पड़े के लिए हुआ, उसके लिए भी हो सकता है सभी बाकी ज्ञानों के लिए भी।
यही ऊपर जो बताए ना
अवधि ज्ञान के लिए
मतिशुद्ध अवधि ज्ञान में अनुत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय नहीं लिया, अंतर्मूर्त लिया,
जबकि अपन ने अभी पढ़ा पांचों ज्ञानवरण लिया उसने, अभी 335 पढ़ा तो उन्होंने पूरा लिया था। पांच ज्ञानवरण आदि
उनका ज्ञान चालू रहता है,
उनका
मतिशुद्ध अवधि ज्ञान चालू रहता है, मार्गना चेंज नहीं है, मन परे ज्ञान नहीं रहा, मन परे ज्ञान नहीं रहा इसलिए एक समय घटित हुआ। देखो फिर से दोबारा सोचते हैं, मन परे ज्ञानी ग्यारहवें में अबंध था, बंद नहीं कर रहा था,
एक समय के लिए बंद कर रहा,
एक समय के लिए बंद किया तो कौन सा हुआ था? अनुत्कृष्ट हुआ। यानी जो बंद कर रहे है वो अनुत्कृष्ट ही था, एक समय बंद करके मरण हुआ तो मार्गना बदल गई, मैंने परे ज्ञान नहीं रहा। इसलिए अनुत्कृष्ट बंध अनुत्कृष्ट स्थिति बंध एक समय का हुआ। और ये बात मतिशुद्ध अवधि में घटित नहीं होती क्योंकि मार्गना नहीं बदलती। कितनी कितनी अपेक्षा देखनी पड़ती है। इतनी यहाँ तो हम चर्चा करते हैं उत्तर मिलता है, वो कल आए थे ना अमेरिका के शरद भाई, हमारा दुख आपको समझ नहीं सकते, स्वाध्याय के लिए अभी कोई दूसरा नहीं मिलता। चलो चलो भी आगे बढ़ेंगे। तो ये तो अपना कल का प्रश्न सॉल्व हो गया। उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि, कुछ कर्म हुआ है क्या, कुछ कम कर दो। गलत छप गया है। श्रेणी में प्रकट हो सकता है, उसमें क्या प्रकट होने में क्या बाधा। विशुद्धि से कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, उसके लिए कोई ऐसा वो परिहार विशुद्धि जैसे तो कंडीशन है नहीं। मुझे अवधि ज्ञान के बारे में याद है कि 12वें गुण स्थान में वो प्रकट हो। हम कहेंगे यूज कुछ नहीं तो क्या फायदा, ऐसे कुछ पूछने वाले भी मिलते हैं तो दूसरे की बातें जानते रहे तो फायदा हुआ ऐसा लगता है ना। हाँ देखो देखो, आयु कर्म का काल ओघ के समान है, यानी एक समय के लिए उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट है तो जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। इसी प्रकार संयत सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि संयत जीवों के जानना चाहिए, यानी संयत जीव यही जो मन परे यानी की बात हमने की तो संयम ही है। तो ऊपर गया अबंध था, फिर नीचे आया बंद होने लगा, एक समय में ये हो सकता है। सामायिक छेदोपस्थापना है 9वें में आ गए, एक समय के लिए बंद करके बाद में मरण होगा। संयता संयतों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, ये सब जगह लिया, उत्कृष्ट अवधि में भी लिया उत्कृष्ट के लिए, मनोपरे ज्ञान में भी लिया और यहाँ पर भी ले रहे, यानी सब में दृष्टियों में जो उत्कृष्ट है वो तो लगातार अंतर्मूर्त उतना का उतना होता है, ये बात ख्याल में आ
गई।
उसमें उत्कृष्ट स्थितिबंध है लगातार अंतर्मूर्त, और वो भी नीचे के गुणस्थान के सन्मुख, जो मिथ्यात्व में जाता है तो मिथ्यात्व के सन्मुख, मनोपरे यानी चौथे के सन्मुख। अब संयता संयतों में ही अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण है। देखो यहाँ ये बात की ना, उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट ऐसा नहीं समझना है, परंतु संयता संयत मार्गणा अंतर्मूर्त तक रह के तो पांचवे में आया। उत्कृष्ट कब होगा तो मिथ्यात्व के सन्मुख अवस्था में, उत्कृष्ट होकर अनुत्कृष्ट हुआ ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्यों तो गिरने वाला जो उत्कृष्ट होता है, परंतु वह आया ही पांचवे में, अंतर्मूर्त तक रहा या नीचे चौथे में गया या सातवें में गया पहले में गया जो कुछ हुआ, अंतर्मूर्त तक उसने अनुत्कृष्ट बंद किया।
एक चीज इससे घटित हो रही है कि उत्कृष्ट में जो एक समय पर घटित करते हैं
वो मिथ्या,
उसके बाद में जो अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट मतलब होता तो ही घटित होता है, और एक समय के लिए उत्कृष्ट हुआ फिर अनुत्कृष्ट होगा तो एक समय घटित होगा। और अगर वो जीव जो है इधर गिर रहा है तो लगातार
वो तो उत्कृष्ट अंत में ही होता है, उसके बाद अनुत्कृष्ट कहाँ हो रहा है, इसलिए उसको उत्कृष्ट के बाद उसका अनुत्कृष्ट नहीं होता। तो जब
जो गिरने वाले
तो ये तो या तो उपशम श्रेणी में वो मरण की अपेक्षा घटित होता है जहाँ बंध था और फिर बंध शुरू हुआ, यानी अलग अलग मार्गणा में अलग अलग सोचना, ऐसा रूल नहीं बना सकते उसका।
जब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था यहाँ पर ना तो मतलब उत्कृष्ट बंध किसी जीव के एक समय हो सकता है और अधिक से अधिक,
ये ओघ में तो बताया था, ये ओघ की बात थी, ओघ की बात
इंट्रोडक्शन में
यही लिखा था, जो उत्कृष्ट के बाद अनुत्कृष्ट होता है तो एक समय में फिर उत्कृष्ट नहीं होगा, उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट हुआ एक ही समय में फिर दोबारा उत्कृष्ट हो ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। परंतु अनुत्कृष्ट एक समय कहाँ घटित होता है, मार्गणा में, जहाँ मार्गणा बदलती है, मार्गणा बदलती है, योग है कषाय है मार्गणा बदल गई वहां तो एक समय घटित होगा, अदरवाइज उत्कृष्ट का जगह यानी अनुत्कृष्ट हुआ और फिर दोबारा उत्कृष्ट बंद हुआ एक समय में ऐसा नहीं होता।
समय जो 11 से 10 में आया
वहाँ बंद था, वो बंद करने लगा और मरण हुआ।
पर यहाँ पे छठे से जो पांचवे में आता है
नहीं होगा, यहाँ नहीं बताते ना, कितना बताएंगे, तो नहीं लिखा तो नहीं होता।
यहाँ से तो अपन ने जितनी भी समय दृष्टि से संबंधित मांगना है
अंतर मूल
का मिनट उत्कृष्ट का नहीं घटित
एक समय
एक समय आगे और पता
चल रहा। पहले हमने ये भी देखा था जो गिरकर मिथ्यात्म आता है वो भी, उसका भी मरण नहीं, ऐसा भी कहीं देखा था। ये तो हो गया संहिता संयत का अनुत्पृष्ट। आयु कर्म का काल लोक के समान है। चक्षु दर्शन में ये ज्ञान के बाद दर्शन मार्गना ले रही, बीच में संयत भी बता दिए। उक्त काल त्रस पर्याप्त कुंभ के समान है। सात कर्मों का उत्कृष्ट किसका होगा, जो संगी है, पंचेंद्रिय है, मिथ्या दृष्टि है, पर्याप्त है, वो उत्कृष्ट संकलेश वाला है, त्रस है ना, तो वो बात घटित होगी। हाँ बाकी काल बाकी घटित नहीं होता है। चक्षु दर्शन का लगातार काल कितना होगा,
वो
तो सागर पृथक तो सौ सागर पृथक तो जो कुछ है उतना होगा,
इसलिए
हाँ। अवधि दर्शनी और सम्यक दृष्टि होगा त्रस पर्याप्त का। अच्छा पर चक्षु दर्शनी का इतना नहीं होगा क्योंकि त्रस पर्याप्त में द्विंद्रिय और तीन इंद्रिय भी आ गए, यहाँ चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय आ गए। तो अकेले पंचेंद्रिय का, ये चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय है, कितना लिखा है? चक्षु दर्शन का अलग से लिखा है क्या काल? त्रस पर्याप्त कुंभ का कितना कहा था? पर्याप्त त्रस पर्याप्त, परंतु चक्षु दर्शन
शादी त्रस पर्याप्त है, बारह सौ साठ साल
नहीं नहीं वो अलग बात। ये 2000 सागर त्रस पर्याप्त का 2000 सागर है। हाँ वो द्विंद्रिय तीन्द्रिय हुआ ही नहीं है, त्रस की पर्याय उसकी यही मिली चक्षु दर्शन वाली, 2000 सागर तक रहा ऐसा कैसा। अवधि दर्शनी और सम्यक दृष्टियों में उक्त काल अवधि ज्ञानी उनके समान है। अभी हमने ऊपर जो आभिनिबोधिकृत अवधि ज्ञान की बात की थी, उत्कृष्ट स्थिति बंध जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, अनुत्कृष्ट का भी जगन्य काल अंतर्मूर्त देखा था और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागरों को देखा। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो कल की बात रिपीट हुई परंतु अभी अपना समाधान तो हो गया। कृष्ण नील कपोत्लेशा में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल ओघ के समान है, एक समय और अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है जो हर जगह होता है, और उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक 33 सागर। साधिक इसलिए कहा कि वहां जाने के पहले कृष्णलेशा शुरू हुई, वहां 33 सागर तक कृष्णलेशा में रहा, कृष्णलेशा के साथ मरकर यहां आया। साधिक 17 सागर नीललेशा के लिए और साधिक 7 सागर कपोतलेशा के लिए। परंतु अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त क्यों लिया? लेशा पलटने की अपेक्षा से मनुष्य तीर्यंचों में एक समय नहीं होगा, जैसे हमने योग में देखा था। लेशा
बच्चे ले रहे हैं, बीस पदों में ले रहे हैं लेशा ब्रह्म, तीसरे लाइन बेसिक बोला
जगत निकाल एक समय ऊपर क्या है अनुकस जहन अंतम उत्तम तो वहां उन्होंने वो पर नरकों के विषय बताए नरकों में उन्होंने नरक की अपेक्षा उन्होंने ली ऐसा लगता है वो अने नरक में रहते हुए अनुत्कृष्ट का फिर भी वहां ऐसा नहीं ले सकते अंत में उन्होंने उत्कृष्ट स्थिति बंद किया और एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ नहीं पर उनकी लेशा नहीं बदली नरक गति बदली गई लेशा नहीं बदली
लेशा नहीं बदली वो नरक गति
बदली परंतु मनुष्यों में रहते हुए
एक समय हो जाएगा
कृष्ण होता है तो होता है तो लिखते हम तो केवल सोचना है मनुष्य तीन इंचों में कृष्ण से नीचे का पथ होता रहते हैं अंतर्मुख अंतर्मुख जैसे योग पलटता है
परिणाम ज्ञात से बदलत
तो यह अंतर्मुख बताया है
पर मनुष्यों के लिए तो विषय का अंतर्मुख पलटी पलटे पलटती है
देखो मेरा ये कहना है कृष्ण का उत्कृष्ट कब होगा कृष्ण में उत्कृष्ट कब होगा जगन्योग की ओर कैसे जब कृष्ण का ये कृष्ण है ये नील है ये कब होता कृष्ण लेशा में उत्कृष्ट स्थिति बंद कब होगा ये अभी नरक छोड़ दो उत्कृष्ट उसका जो कोई अनुभव होगा तब बराबर है ना तो लेशा पलटने से क्या होगा ये उत्कृष्ट था अब उसका अनुत्कृष्ट शुरू हुआ तो कृष्ण लेशा के रहते हुए उसको उत्कृष्ट करना है तो वापस ये उत्कृष्ट प्राप्त करना पड़ेगा आप कहेंगे लेशा पलट गई
वहां से तो नहीं पलटेगी तो वो तो नियम के सम्मुख होगा
तो उसकी पलटेगी वही तो मैं वही बताना चाहती हूँ यहाँ तो उसका उत्कृष्ट नहीं होगा संक्रमण जो होता है यहाँ से पलट कर डायरेक्ट नील तो नहीं होगा यहाँ के जो कुछ लास्ट के जो कुछ अलग स्थान है वहां से वो नील में जा सकता है यहाँ से तो जा नहीं सकता तो उत्कृष्ट किया इस परिणाम में इस परिणाम के साथ मान लेते ये जंप करके यहाँ के कुछ अलग परिणाम होगी पर यहाँ का परिणाम तो नहीं होगा तो लगातार उसको नील भी हो जावे तो भी अनंतर मूर्त तो कृष्ण में रहना पड़ेगा अब यहाँ का नील है उत्कृष्ट बंद किया तो सर्वोत्कृष्ट परिणाम था उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट परिणाम ही हुए ऐसी कोई बात नहीं इसमें तो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है एक एक लेशा में तो उसके असंख्यात वे भाग हीन असंख्यात गुना हीन भी हो जाए तो फिर यहाँ का कोई विशिष्ट परिणाम हो जाएगा एकदम जाके वो जिसको कहें ना अन्य लेशा में पलटने के स्थान वो इमीडिएट नहीं हो सकते और उसका अपना ही उत्कृष्ट होने के लिए भी अंतर्मूर्त लगेगा या लेशा पलटने के लिए भी अंतर्मूर्त लगेगा क्योंकि उत्कृष्ट से डायरेक्ट वो अन्य लेशा में एक समय का अनुत्कृष्ट करके अन्य लेशा में नहीं जा सकता यानी यहाँ का उत्कृष्ट हुआ और डायरेक्ट यहाँ का ये नहीं हो सकता
उत्कृष्ट ये ऐसा नहीं घटित होगा
होता ही है ना वो तो सर्व जगह बता उत्कृष्ट का तो एक समय सर्वत्र घटित होता है एक ही समय के लिए उत्कृष्ट हुआ उसका फिर अनुत्कृष्ट होता है वो तो ओग में भी बताया क्योंकि लेशा पलट जाए तो उत्कृष्ट से डायरेक्ट लेशा पलटेगी नहीं नील वाली नहीं होगी एक समय के अंदर क्योंकि उसके बीच में कुछ स्थान छोड़कर असंख्यात भाग हीन भी हो जाए उसका अनुभव तो भी उसका संक्रमण स्थान जब यानी जिस स्थान से नील में टर्न हो सकता है उसको संक्रमण स्थान कहते हैं लेश शब्द, वो प्राप्त होने में अंतर्मुहूर्त तो चला जाएगा उसका। उत्कृष्ट के बाद इमीडिएट एक समय में अनुत्कृष्ट करके वो नील में पहुंचा ये बात नहीं हो सकती, ये बात बताना चाहिए। योग में ऐसा कोई सवाल नहीं था, क्रोधादि में ऐसा कोई सवाल नहीं था। लेशा में एक समय
अभी आपने पढ़ा आगे इसी प्रकार
पीत पन्न और शुक्ल लेशा में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल वह के समान है, एक समय और अंतर्मुक्ति। अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल एक समय है,
ले लिया
ये मरण के
अपेक्षा का लिया ना,
मरण के अपेक्षा
अंतिम समय में एक समय
दृष्टि मिथ्या दृष्टि देव पीत पद्म शुक्ल में मरते हैं और एक समय में उनके लेक्षा परिवर्तन होता है मिथ्या दृष्टि की। यहाँ कृष्ण नील कपोत वाले की लेशा नहीं बदलती, समय दृष्टि हो तो भी उसी लेशा में, मिथ्या दृष्टि हो तो उसी में रहेगा ना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो तीन अशुभ लेशा में ही जन्म लेता है। तो शुभ लेशा में जो देव मरता है उत्कृष्ट बंध किया एक समय के लिए अनुत्कृष्ट किया और फिर मर गए तो लेशा पलट गई, मिथ्या तो में यहाँ जन्म लेते हैं, नहीं तो ये एक समय में कोई भी लेशा नहीं पलटती। देवों की जो विशेषता है मरकर जो यहाँ आने वाले हैं उनके लिए नियम लागू होता है। देखो लेशा में कृष्णादि में एक समय में उत्कृष्ट करके एक समय नहीं उत्कृष्ट करके एक समय अनुत्कृष्ट करके फिर लेशा पलट नहीं सकते।
दो रूल के बीच में लेना, एक तो हमने कहा कि वो मरता है जो लेशा होती है वही लेशा उसके जन्म के समय में होती है
नरक के लिए
नार्की के
क्योंकि वो अशुभ है तो मिथ्या तो में उसी अशुभ लेशा में जन्मेगा, समय दृष्टि होगा तो भी अशुभ लेशा में जन्मेगा। नार्की समय दृष्टि मनुष्य में आएगा कृष्ण लेशा में आ सकता है, छठे नरक का नार्की समय दृष्टि वहां की मध्यम कोई कृष्ण लेशा में मरा और उसी कृष्ण लेशा में अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य में आ गए,
मनुष्य भी नरक में जा रहा है कृष्ण लेशा में जाकर मरेगा
उसका तो कोई सवाल नहीं होता, मिथ्या दृष्टि है कृष्ण लेशा में नीचे गया वो तो वहां तो कोई सम्यक का सवाल नहीं है, तो वो नरक के सम्मुख है उसके तो वो ठीक है वही लेशा है।
अशुभ में गया वहां पर एक समय हो गया देवों के कारण,
वैसे मनुष्य मिथ्या दृष्टि है भवनत्रिक में जा रहा है हाँ तो क्या होगा
पहले तो उसके अशुभ में मान
लो नहीं उसकी अशुभ हो जाएगी ना, प्रीत में मरेगा और अशुभ में जन्मेगा
विग्रह गति में रहेगी,
विग्रह गति में उसके अशुभ हो जाएगी और वहाँ वैकृत मिश्र में भी अशुभ तीन रहेगी, वैकृत मिश्र में उसके अशुभ तीन रहेगी मिथ्या दृष्टि सासाधन वाले की, यानी वो भी मनुष्य में मरा तो पीतलेशा में मरा और वहाँ अशुभ में जन्म ये हो सकता है।
मतलब जो भौनिक में हो रहा है वो शुभ लेशा पीत में भी मर सकता है
हाँ उसी में मरेगा
जो
अशुभ लेशा हो
जाएगी फिर
वापिस पचास महीने पर वो तो पीत लेशा की बात वो बाद में कोई सवाल नहीं उसको भवनत्रिक के लिए सौधर्म जाने वाला मिथ्या दृष्टि पीत में ही जन्मेगा उसकी लेशा टर्न नहीं होगी, सौधर्म से लेकर ग्रहवेग तक मिथ्या दृष्टि भी जन्मेगा तो यहाँ उसी लेशा में मरकर उसी लेशा में जन्मेगा, भवनत्रिक के लिए वो रूल नहीं, भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में अशुभ तीन लेशा ही होती है परंतु अशुभ लेशा में मरकर वहां उत्पन्न नहीं होता, मरता है पीत में और जन्मता है अशुभ में।
अच्छा, और अशुभ में मर के वनवासी नहीं जा सकता अशुभ लेशा में
नहीं जाएगा, कपोत में तीर्यंच होता है अपर्याप्त अवस्था में पहला नरक होता है
तो
ये नहीं मिलेगा आपको उसमें भी मरण की लेशा बताई है, परंतु देवों में उत्पन्न होते समय उसकी ये नहीं मिलेगा, ये है ही नहीं उसमें। शेषु के आसपास होगा ना लेशा, शेषु को
चार लेशा होती है तो पक्का है।
वो तो चार लेशा असंगी के होते वो आपने पढ़ा है, वहाँ तो छह लेशा होती है बहुनत्रिक में, अपर्याप्त में तीन अशुभ और पर्याप्त में पीत लेशा। मरते समय वो पीत में मरता है क्या, ऐसा सवाल है। भवनत्रिक में जाने वाला कौन से लेशा में मरता है, कोई भी हो ना जो जाने वाला है,
हमारे ये दीपायन मुनि है,
मनुष्य तीरज कोई भी ले लो।
हाँ। वो गए ना एक बार देव में तो जलाने के भाव आ रहे, तो वो अशुभ लेशा में थी, दीपायन मुनि का उदाहरण।
देखो अशुभ में मरकर जाने वाले की बात अशुभ भाव पीतलेशा वालों को नहीं आ सकते क्या, पीतलेशा वालों को नहीं आते अशुभ भाव, ये सारे व्यंतरों को आ रहे हैं। वो होता था ना यासुर कुमार इतना, वो नारकियों में जाते हैं नगरादि जलाते हैं फिर भी उनकी पीतलेशा होती है, नहीं ये तो नियम नहीं हम बता सकते। यहाँ तो इतनी बात है कि भवनत्रिक में जन्म लेने वाले जीव यहाँ मनुष्य तीरंज कौन से लेशा में मरते हैं, ये प्रश्न है। चलो ठीक है, लेशा का स्वामी देख लो। हाँ पर्याप्त में तो होता ही है ना, उसका सवाल नहीं, यहाँ मरते समय कौन से लेशा उसकी बात चल। जैसे देव पीत लेशा में मरकर मिथ्या दृष्टि मनुष्य हुआ या तिरंज हुआ तो वो अशुभ लेशा में आ गया, वैसे यहाँ का पीत लेशा में मरकर जो भवनत्रिक में जा रहा है वो वहाँ अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा वाला हो जाता है, ये मेरा कथन था। देखो अभी आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो अपने क्या डिराइव किया, कृष्ण लेशा की बात चल रही थी, कृष्ण लेशा में जो उत्कृष्ट करके एक समय में उत्कृष्ट किया तो एक समय में उसकी लेशा पलट नहीं सकती, उत्कृष्ट के बाद एक समय में लेशा पलट, क्योंकि उत्कृष्ट का अंश है उसका कृष्ण लेशा का, जघन्य तक आने के लिए अंतर्मूर्त तो चला जाएगा क्योंकि दोनों में असंख्यात लोक प्रमाण, वो तो स्थिति के नहीं परिणामों के जो भेद है, तो डायरेक्ट जम करके उत्कृष्ट परिणाम से वो जघन्य पे नहीं आ सकता जहां से वो संक्रमित करे नील में, क्योंकि किसी भी पॉइंट से वो नील में नहीं जा सकता, उसका जो संक्रमण का पॉइंट है वो भी विशिष्ट, यानी उसके जघन्य की तरफ वाले जो है वहां से उसका संक्रमण हो सकता है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल जघन्य तक पहुंचे। इसलिए अनुत्कृष्ट का एक समय नहीं हुआ, अंतर्मूर्त गया। ये एक समय पीत पद्म शुक्ल के लिए वहां तो घटित होता है, यानी कृष्णादि तीन में नहीं घटित हुआ, कृष्णादि तीन में अंतर्मूर्त, उसी का मैंने उदाहरण एक्सप्लेनेशन दिया कि उत्कृष्ट किया अनुत्कृष्ट का करके वो उसके लेशा नहीं पलटे। अब पीत पद्म शुक्ल के लिए नहीं, देव है मिथ्या दृष्टि अपने अपने शुभ लेशा में उत्कृष्ट का बंध किया अनुत्कृष्ट किया और मरकर मिथ्यात्व के साथ मनुष्य में आए या कोई भी तो लेशा पलट गए, क्योंकि मनुष्य मिथ्यात्व में जन्म लेता है या सासाधन में, तीन अशुभ लेशा में ही जन्म लेता है। ये नियम यानी पित्तादि तीन के बाबत अलग नियम, यानी देव ने उत्कृष्ट बंद किया, एक समय अनुत्कृष्ट किया, और मिथ्या दृष्टि है इसलिए
अशुभ दृष्टि।
हाँ, एक समय में लेशा पलटी। मरकर लेशा अशुभ हुई। इसलिए एक समय घटित हुआ। ये कृष्णादि में मर भी जाता है तो भी लेशा पलटती नहीं है। यहाँ मिथ्या दृष्टि है, शुभ लेशा में देव मर गया है, फिर भी मनुष्य में या तिरंच में उत्पन्न होता है तो उसकी लेशा पलट कर जन्म लेता, इसलिए एक समय यहाँ घटित होता है। अनुत्कृष्ट का एक समय पितादि तीन शुभ लेशा में घटित होता है, वैसे कृष्णादि तीन में एक अंतर्मूर्त घटित, एक समय नहीं होता। ये हो गई चर्चा। देखो नीचे से चौथी लाइन फिर पड़ती। इसी प्रकार पीत पद्म और शुक्ल लेशा में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का काल लोक के समान है, यानी एक समय और अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय है। इसका एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने नहीं दिया है, परंतु अभी हमने सोच लिया। और उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक दो सागर, क्योंकि क्रम वो तो अनुत्कृष्ट ही करता रहा, उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं है, तो साधिक दो सागर सौधर्म की उत्कृष्ट आयु ली, साधिक 18 सागर पद्मलेशा के लिए सहस्रार की उत्कृष्ट आयु ली, और साधिक 33 सागर है। अब ये साधिक में ऐसा भी लेना, जाने के पहले और आने के पश्चात दो अंतर्मुख बढ़ जाए। और यहाँ सौधर्म और सहस्रार में तो साधिक में तो आधा सागर ज्यादा ले सकते ना, वो साधिक में गाता युष्क वाले। आयु कर्म का काल वक के समान है। ये लेशा मार्गना अटपटी है ना। अब क्षायिक समय दृष्टियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट सिद्धिबंध का जघन्य काल एक समय है। जब सम्यक दृष्टि कहते हैं तो मिथ्यात् के सन्मुख वाला लेते हैं, परंतु अभी क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो उसका तो नीचे के कुछ गिरने का सवाल नहीं है। हाँ, तो उनके योग्य जो कुछ संकलेश परिणाम है। चौथे के सन्मुख वाले क्यों कहेंगे? चौथे वाले ही कहेंगे, उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी कि नहीं? चौथे वाले को जब कृष्ण लेशा होती है, अरे उसकी तो ज्यादा विशुद्धि होगी। सातवें से छठे से जो आता है उसकी विशुद्धि छठे के योग्य है ना, भले उसमें संकलेश भी घटित करो, तो जो चौथे में ऑलरेडी है उसके संकलेश ज्यादा हो सकते हैं। अभी चौथे में है, गिरने का सवाल नहीं है, परंतु संकलेश तो हो सकते हैं कि नहीं ज्यादा? रामचंद्र जी सीता के वियोग में क्षायिक समय दृष्टि में सामित्व, हाँ, चौथा गुण स्थान है, उसके संकलेश परिणाम है।
अभी जो नरक जाने वाला नहीं, क्षायिक समय दृष्टि पहले नरक जाने वाला ऐसा है नहीं, लेकिन चारों गति लिया
वो तो तीर्थंकर प्रकृति में हम गठित करेंगे, परंतु यहाँ वैसा कुछ
नहीं लिया, चारों गति लिया।
उसके संकलेश जब ज्यादा हो गए तब हो सकता है।
अंतर्मूर्ति मतलब
जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त सब जगह है।
हाँ,
अंत कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें जो यथायोग्य कम ज्यादा होता है उसके लिए वो उत्कृष्ट है, नहीं तो कोड़ा कोड़ी सागर ही होगा, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बंध ले रहे हैं हम जगन्य। अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्ति इसलिए लिया कि वापस उसने उत्कृष्ट किया, और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागरों को में किसमें अभी निबोधित।
हाँ, उत्कृष्ट जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, और यहाँ पे एक समय बताया शायद समय समान बताया, तो यहाँ पे एक समय हो जाएगा।
देखो वहाँ जो उत्कृष्ट बताया था वो गिरने वाले की बात थी, अभी सुनो अभी अभी निबोधिक से मिथ्या तो मैं गिरने वाला लिया था, और यहाँ उसका गिरने का सवाल नहीं है, चौथा गुण स्थान है उसका, एक समय के लिए उत्कृष्ट करके फिर अनुत्कृष्ट हो गया। यानी उसकी वो तो क्षायिक समय दृष्टि का क्षायिक समय दृष्टि रहने वाला, अभी उसमें कुछ उसमें गिरावट नहीं आने वाली, इसलिए वहां गिरने के सम्मुख उसके वो परिणाम जो उस टाइप के हो रहे हैं। अब यहाँ साधिक 33 सागर कैसे कहा ख्याल में है ना, यहाँ उसने क्षायिक समय दर्शन प्राप्त किया पूर्व कोटि के भाव में, आठवें साल में करा हुआ हमारे क्या जाता है, मुनि हो गए 33 सागर में गए और वहां से आए क्षायिक समय दृष्टि रहे कब तक,
पूरा
यानी वो बंधक जब तक करते थे तब तक लेना, तीन पल्ले की करेंगे तो 33 सागर में नहीं जाएंगे, दो सागर में जाएंगे, तीन पल्ले के लोग मैं होते 31 सागर कट होगा। आयु कर्म का काल वो के समान है, कौन सी, हाँ 33 सागर प्लस कुशकम दो पूर्व कोटि, क्योंकि पहले पूर्व कोटि हमने आठवें साल में लिया था, क्षाई समय दर्शन हुआ, फिर आने के पश्चात पूर्व कोटि के अंत में शपक श्रेणी चढ़ गई, तो दसवें तक उसका बंद था, तब हम अनुत्कृष्ट कहेंगे उसको। वेदक समय दृष्टियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यहाँ अंतर्मूर्त लिया, क्योंकि वेदक सम्यक दृष्टि में उत्कृष्ट कब होगा, मिथ्यात्व के सम्मुख वाले हैं, तब चौथे गुणस्थान वाला वेदक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व के सम्मुख है उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा, वो अंतर्मूर्त। वहां हमने हर जगह गिरने वाले के अंतर्मूर्त तक देखा था, मिथ्यात्व के सम्मुख वाला जीव लिया ना। अब उसका अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि कोई वेदक समय दृष्टि हुआ अंतर्मूर्त तक रहा, श्रेणी चढ़ गया की जरूरत नहीं है, ये चौथे से चौथे में आया वेदक का वेदक रहा। अच्छा, अंतर्मूर्त ऐसे भी हम देखते ना, वेदक का अंतर्मूर्त काल हमने देखा, जगन्य काल अंतर्मूर्त है, वेदक समिक तो का जगन्य काल अंतर्मूर्त है, औषमिक था वेदक हुआ अंतर्मूर्त में क्षायिक कर दिया, ऐसा भी हो सकता है।
लेना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि गिर के वेदक समय गिर के वापस एक समय
जगन्य काल अंतर्मूर्त है ना वैदिक समय का, उसका ही लेना इसमें, वही उसका अनंत कष्ट काल है। क्योंकि ऊपर के गुणसानों में भी भेजे तो भी उसका वैदिक समय तो है। कहाँ पर? अपन वेदक किया तो या तो उसको द्वितीय उपशम कराओ या तो क्षायिक कराओ, बात एक ही है ना। तो वेदक सम्यक्तों का जो जघन्य काल है उसको यहाँ ले लेना, ये बात।
लेकिन वो वेदक से गिरा और एक समय में वापस वेदक हो गया।
एक समय में नहीं हो सकता, अंतर्मूर्त कहाँ गिरा?
मिथ्यात्व माया
तो अंतर्मूर्त में होता नहीं उसको सम्यक्त। मिथ्यात्व में रहने का अंतर्मूर्त काल है ही नहीं है, सॉरी एक समय का काल नहीं है। अरे नहीं, एक समय में नहीं आता, अंतर्मूर्त लगता ही है। एक समय में कोई फिर दोबारा नहीं चढ़ता। हाँ, जो कोई यथायोग्य कमान छोटा अंतर्मूर्त है उसका तो लगेगा ही।
बिना करण के भी चढ़ जाते हैं,
बिना करण के किए करता है, यही उसी जीव की बात चल रही है। क्योंकि मिथ्या तो में आया है तो अभी संकलेश में आया है, अभी थोड़े जो उसकी जो विशुद्धि थोड़ी बढ़ेगी फिर समय को प्राप्त करेगा वापस, तो उसमें अंतर्मूर्त जरूर जाता है। एक समय में कोई समय को नहीं प्राप्त कर सकता, ये नियम है, हमने बहुत बार देखे। तो यहाँ जो वेदक समय को का अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त कहा, तो वेदक समय को का जगन्य काल मिनिमम का मिथ्या तो मिलाएंगे तो उसका उत्कृष्ट ऐसा कर सकते ना हम। देखो देखो, वेदक सम्यक्त्व में उसने वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया, अनुत्कृष्ट ही रहा, अब वो मिथ्यात्व के सन्मुख है। उत्कृष्ट क्या, उसका वेदक सम्यक्त्व तो चलता रहा, यानी सन्मुख हुआ तो अंतिम अंतर्मूर्त में उसने उत्कृष्ट बंद किया, तो उसका अनुत्कृष्ट का काल और, यानी मैं तो वही बता, वेदक सम्यक्त के काल से भी वेदक सम्यक्त के अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का काल कम हो सकता है। फिर से किसी ने वेदक सम्यक्त प्राप्त किया, यहाँ ये वेदक समय दृष्टि है, उसने अनुत्कृष्ट बंध प्राप्त किया और क्षायिक करने के बदले उसको मिथ्या तो में ही लाओ ना वापस, तो मिथ्या तो में ला तो लास्ट में उसने उत्कृष्ट बंध किया, तो इतना पूरा अंतर्मूर्त वेदक सम्यक्त का था, उसमें से उत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतर्मूर्त और घटा दो। वेदक सम्यक्त के मिनिमम काल में से वो गिरने वाले के अंतर्मूर्त काल तक उत्कृष्ट होता है उसको माइनस कर दो, तो ये रिमेनिंग जो है अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का काल जघन्य। नहीं, अंतर्मूर्त अभी हमने पढ़ा, गिरने वाले का उत्कृष्ट, इसलिए यानी ये जो अनुत्कृष्ट का जो जघन्य अंतर्मूर्त बताया उसका वेदक सम्यक्त का जघन्य काल माइनस उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतर्मूर्त, जघन्य काल अंतर्मूर्त है ना उसका, यथायोग्य अंतर्मूर्त है। वेदक का जो जघन्य काल है उसमें से मैंने ऐसा वेदक लिया हमने कि मिथ्या दृष्टि था, वेदक समय तो प्राप्त किया और फिर मिथ्यात्व में जा रहा, अंत में वो मिथ्यात्व के सन्मुख है, इसलिए उसने एक अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट का बंद किया। यानी जितने समय तक वेदक समय दृष्टि रहा उसमें से अंतिम उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल माइनस कर दो, तो वेदक सम्यक्त के जघन्य काल से भी ये उत्कृष्ट काल माइनस करने के कारण अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य काल कम होगा। वेदक सम्यक्त्व की हम चर्चा कर रहे थे, किसी ने यहाँ तो वो काल बढ़ेगा ना, हमने जगन्य काल लिया है उसका, वेदक समयत्व में रहने का काल करने वाला ही लेना है ना हमको, हमें मिनिमम काल देखना है अनुत्कृष्ट। देखो ये यहाँ तक हमने ऐसा लिया है, किसी ने वेदक समय को प्राप्त किया, मिथ्या दृष्टि था, वेदक समय दृष्टि है, तो उसका वेदक समय तो में काल रहने का इतना है और फिर वो मिथ्या तो में है। ये वेदक समय तो में रहने का उसका मिनिमम काल। अब हमने ऐसा जीव लिया कि अत्यंत उत्कृष्ट संकलेश करके मिथ्या तो में गया, तो उसके अंतिम अंतर मुहूर्त तक उसने उत्कृष्ट बंद किया, तो उसका जो इतना जो जगन्य काल था वेदक समयत्व का, उसमें से उत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतर्मुहूर्त हमने माइनस किया, तो वेदक समय दृष्टि के अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जगन्य काल कितना होगा, ये इतना अंतर्मुहूर्त
माइनस,
यानी वेदक का जगन्य अंतर्मुहूर्त माइनस वो जो उत्कृष्ट का बंध करता है वो अंतर्मुहूर्त, यानी वेदक समयत्व का जगन्य काल माइनस वेदक समय दृष्टि के उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल, ये बड़ा अंतर मत हो छोटा अंतर मत, यथा योग्य। अब आगे बढ़ेंगे,
मतलब उत्कृष्ट स्थिति का अंतर मूल मैक्सिमम और जगन्य का दोनों मिलाकर वेदक से कम हो गया,
मिला है क्यों
वेदक जोड़ा ना अपन ने, ए प्लस बी वेदक समय का काल,
ये वेदक समय तो का काल पूरा है यहाँ से यहाँ तक
ना, और अभी जो पहले उसने अनुत्कृष्ट रहा
ये अनुत्कृष्ट ही था थ्रू आउट, अंत में उसने उत्कृष्ट किया, तो ये पूरे काल में से इसको माइनस किया ना,
ये उत्कृष्ट किया है हाँ। तो इसका पूरा अंतर जितना हो सकता उतना ही
हाँ। ये उसमें से माइनस कर दिया
है ना हाँ। तो उत्कृष्ट का पूरा अंतर है, वेदक कितना बड़ा हो गया,
जो यथा योग्य उससे बड़ा ही है,
इससे बड़ा है, नहीं नहीं आप
ये उत्कृष्ट
से यहाँ से आने को छह समय लगे,
पांच समय उत्कृष्ट के तो 95 रह गए ना,
इसी का बता
रहे बता रहे, जैसे वेदक समय का टोटल काल है
मान लेते 100 समय है, 100 समय,
100 समय, अब इसमें से हमने बोला अनुत्कृष्ट मान लीजिए रहा 25 समय रहा,
25 नहीं रहा
उत्कृष्ट मान लीजिए वो रहा जितना भी रहा,
पांच समय उत्कृष्ट का रहा, उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल पांच समय रहा, तो अनुत्कृष्ट का 95 रहा,
अभी 95 जो है ये अनुत्कृष्ट का जगन्य काल है
हाँ।
ठीक है ना, और जो पांच है वो उत्कृष्ट का मैक्सिमम काल है
हाँ।
है ना
हाँ।
तो उत्कृष्ट स्थिति बंध का मैक्सिमम काल प्लस जगन्य का मिनिमम
उसका
काल,
उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, उत्कृष्ट के लिए अंतर्मुहूर्त ही है, उत्कृष्ट स्थिति बंध का वेदक समय दृष्टि के लिए उत्कृष्ट स्थिति बंध का ये जो काल है वो फिक्स है, जगन्य भी कहो उत्कृष्ट भी कहो अंतर्मुहूर्त ही है, यानी वो पांच समय से 15 समय ऐसा उसमें नहीं लिया, दोनों का काल एक ही गिना है, उत्कृष्ट का उत्कृष्ट है अब अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल 66 सागर है, पूरे 66 पर वो पूरे 66 सागर किसके होते हैं, जो क्षायिक होने वाला है उसके, आयु कर्म का काल ओग के समान है, उपशम समय दृष्टियों और समय मिथ्या दृष्टियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट के लिए भी अंतर्मुहूर्त बताएं, इन्हें एक समय वाली बात नहीं घटित होती, उपशम क्योंकि उपशम समय दृष्टि में हमने देखा था मिथ्यात्व के सन्मुख वाला गया, समय मिथ्यात्व में भी लेंगे मिथ्यात्व के सन्मुख वाला, तो उसका वो पूरा इसी के बंध का अंतर्मुहूर्त घटित होगा, सासागन में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य काल एक समय है। आप कहेंगे सासागन भी मिथ्या तो के सन्मुख है, उसका अंतर्मुख कहो, क्योंकि सासागन का काल ही एक समय हो सकता है,
लेकिन गिरने वाला है, लेकिन फिर भी
वो तो नियम से गिरने ही वाला है। और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, ये सासागन गुणस्थान का ही काल ले लिया। अंतर्मुहूर्त आवली से ज्यादा है ना, उत्कृष्ट काल छह आवली हम ले ही। अच्छा उससे कम है ऐसा कहना, उत्कृष्ट कितना है? हाँ यथा योग्य होगी। अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य काल एक समय है, यहाँ छह आवली लिखी, यहाँ छह आवली, हाँ उत्कृष्ट काल छह आवली है, यानी उसके भी सांसाधन वाले के भी अलग अलग जो कुछ परिणामों के वेरिएशन है, उत्कृष्ट नहीं हुआ संतोष, यथा योग्य था। आयु कर्म का काल लोगों के समान है। संगियों में, संगी मार्गणा में, संगियों में सब कर्मों का उक्त काल पंचेंद्रिय पर्याप्त कों के समान है, यानी संगी में रहने का उत्कृष्ट काल कुछ हजार सागर है ना, तो वो अनुत्कृष्ट में घटित होगा, एक हजार सागर। हाँ होना ही चाहिए, ऐसा नहीं,
नहीं।
होगा तो अंतर्मुहूर्त तक होगा,
होगा तो अंतर्मुहूर्त पर सभी का उत्कृष्ट होगा, ऐसा
क्योंकि वेरिएशन है ना, कोई कौन से परिणाम से गिर रहा है, कोई कौन सर्वोत्कृष्ट ही होना चाहिए ऐसी जरूरी नहीं है। जैसे सम्यक दृष्टि होता है तो सबकी विशुद्धि एक समान है क्या? यानी होने के पश्चात की बात करें, वो अनिवृत्तिकरण में समझ लो एक जैसी हो गई, चौथे में आने वाले के समान हो गए, परंतु बाद में भी तो उसमें तो वेरिएशन होते हैं ना, असंख्यात लोगों में, यानी अलग अलग जीवन की बात है। जो तीर्यंच सम्यक तो प्राप्त करते हैं, जो मनुष्य सम्यक तो प्राप्त करते हैं, उनकी अपनी अपनी विशुद्धि अलग हो सकती है, उसकी रेंज है अपनी अलग से। ये हो गया आयु कर्म का, संगी की भी बात हो गई। इस प्रकार उत्कृष्ट बंध काल समाप्त हो, उत्कृष्ट बंध काल का अर्थ होता है उत्कृष्ट स्थिति बंध का काल समाप्त हुआ। यानी उत्कृष्ट स्थिति बंध का हमने जगन में और उत्कृष्ट काल देखा था। अब जगन्य बंध काल का प्रकरण है, यानी जगन्य स्थिति बंध कितने काल तक चलेगा, कम से कम और अधिक से अधिक, उसके बाद चलेगी, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ऊव और आदेश। उनमें से ऊव की अपेक्षा सात कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का कितना काल है, जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी वो एक ही अंतर्मूर्त है, वो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, बिल्कुल छपक्षणी वाला, छह कर्मों में दसवें गुणस्थान में और मोहनीय में नौवे में, नौवे के अंतर, क्योंकि वो अंतिम वो स्थिति बंध का काल लिया, जिसमें हम स्थिति कांडक घात का काल कहते हैं, उतना ही जो स्थिति बंध का काल है अंतर्मुहूर्त वाला, उसको लेना। अजगन्य स्थिति बंध का कितना काल है? तो कब से है अजगन्य? एक तो अनादि अनंत भंग है और दूसरा है सादि। उनमें से जो सादी बंग है उसका जगन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। देखो किसकी बात चल रही है, अजगन्य स्थिति बंध का। तो जगन्य कब होता है? तो क्षपक श्रेणी में होता है, दसवें में। बाकी अनादि से क्या हो रहा था? तो अजगन्य हो रहा था। तो अभव्य में तो अनादि अनंत रहेगा। अब जो भव्य है तो अनादि से था और दसवें में क्षपक में जाके उसका अंत हो गया, अनादि शांत भी होगा। अब यहाँ सादी की बात करें तो सादी कब होगा मंजू बेन? हाँ उपशम श्रेणी चढ़ा, ग्यारहवें में बंधन नहीं था तो दसवें में आए तो बंधन शुरू हुआ, ये तो सादी हुआ। कौन सा? अजगन्य के लिए। तो उसका मिनिमम काल अंतर्मूर्त बताया. तो अंतर्मूर्त कैसे घटित होगा मंजू? अंतर्मूर्त जो है ना शादी किसका है? अच्छा फिर आपको 11वें में भेजना है. शपक में भेजो कहीं पर भेजो.
शपक
शपक में भेज
तो जल्दी जाएगा क्योंकि फिर दोबारा उपशम श्रेणी वहाँ भी अंतर्मूर्त लगेगा. फिर भी फोर दोबारा उसको
हाँ
वो बड़ा होगा ऐसा लगेगा
उपशम श्रेणी चढ़ेगा और इधर शपक से भेजेंगे वो छोटा हो जाएगा.
छोटे का उसका काल छोटा
तो
मोक्ष ही भेजना पड़ेगा. में बड़ा वो आगे वो पूरे मोक्ष तक जाने की जरूरत नहीं उसका बंदर रुक जाएगा. वो 13वें में कितना रुकेगा उसे अपने को ही लेना देना नहीं. 13वें में बहुत काल रुकेगी तो भी अपने कोई बात नहीं. परंतु उपशम में चढ़ना और उतरना दोनों होता है ना. यानी आपका कहना उपशम चढ़ना है परंतु उसके लिए फिर दोबारा वो अधप्रवृत्त यहाँ भी अधप्रवृत्त तो करना ही पड़ेगा दोबारा. यानी दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ने में कम समय लगता है कि क्षपक में लगता है? कम विशुद्धि ज्यादा है तो काल कम हो
जाएगा.
उतरते समय काल डबल है इतना हमने देखा. डबल नहीं बहुत कुछ अधिक है इतना देखा. पर क्षपक का काल ज्यादा नहीं होगा. विशुद्धि ज्यादा है तो काल कम होता जाएगा पता नहीं. यानी दोबारा श्रेणी चढ़ेगा इतनी तो बात याद करूँ. अंदर मुर्द लगेगा यानी शादी वाले भंग में अंतर्मूर्त जो बताया है यहाँ लिखा है ना. जघन्य की बात अभी चल रही है वो उत्कृष्ट वाली भूल जाओ. तो शादी का जघन्य काल अंतर्मूर्त जो बताया है शादी शांत ही है. उसको शादी शांत कहने उन्होंने शादी केवल कह दिया है. तो यह श्रेणी में उपशम श्रेणी उतर कर फिर चढ़ा है क्या? अच्छा और उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परिवर्तन वो तो है ना. क्योंकि जब नीचे उतरा तो अजगन नहीं करता रहा तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के जब शपक श्रेणी चढ़ेगा तब हम कहेंगे उसका अंत. आयु कर्म का काल उत्कृष्ट के समान है. उत्कृष्ट के समान है नहीं क्या?
उत्कृष्ट के समान है मतलब उत्कृष्ट एक समय के लिए बनेगा और जघन्य जो है वो दोनों मतलब
यहाँ भी जघन्य है वो अंतर्मूर्त के लिए एक समय के लिए जघन्य एक समय के लिए और अजघन्य अंतर्मूर्त के लिए. जघन्य अंतिम समय में होगा.
जघन्य अंतिम समय
जैसे उत्कृष्ट पहले समय में होता है वैसे जघन्य अंतिम समय में
होता
है. बाकी अंतर्मूर्त तक अजघन्य रहा. विशेषत सात कर्मों का जघन्य स्थिति बंध क्षपक श्रेणी में होता है और वह अंतर्मूर्त काल तक होता रहता है. इसी से सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा. यद्यपि सात कर्मों का अनादिकाल से अजघन्य स्थिति बंध ही होता है पर जिसने अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के प्रारंभ में उपशम श्रेणी पर आरोहण किया है उसके उनका अजघन्य स्थिति बंध शादी होता है. अब यदि यह अजघन्य स्थिति बंध अंतर्मूर्त काल तक रहकर पुनः श्रेणी पर आरोहण करने से छूट जाता है तो इसका जघन्य काल अंतर्मूर्त उपलब्ध होता है. ये कौन सी श्रेणी चढ़ना वो उन्होंने कुछ नहीं लिखा है. श्रेणी चढ़ना इतना ही. और यदि ऐसा जो कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक पुनः श्रेणी पर नहीं चढ़ता है तो इसका काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त होता है. यही कारण है के सात कर्मों के अजगन्य स्थितिबंध का जगन्य काल अंतर्मूल और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। ये तो समझ में आई ऐसी बात है, यहाँ तो उप की बात है। जगन्य अजगन्य में तो आसान है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में, क्योंकि वो तो अनादि से अजगण्य था। अभी मार्गणा में तो मार्गणा ही साधि शांत होती है, तो उसमें देखेंगे आदेश से। नारकियों में सात कर्मों के जगन्य स्थितिबंध का जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। नितिन भाई याद है कब होगा, किसको होगा, कितना होगा? हाँ मंजू, हाँ विग्रह गति में, हाँ कौन से जीव को याद है क्या? नहीं भूल गए, जो असंगी से मरकर आया है असंगी के योग्य करेगा बने। कितना करेगा? अभी जो कुछ हजार सागर के प्रोपोर्शन जो कुछ करेगा उसमें मिनिमम, हाँ माइनस पल्ले का संख्या करेगा। तो कहते एक समय के लिए करेगा या उत्कृष्ट दो समय? आगे पढ़कर पर
हजार सागर माइनस पल्ले का संख्या,
ये आपको याद था कि पढ़कर नीचे पढ़कर याद था?
एक दो समय आया
अच्छा इस बिगड़ गया। अच्छा असंगी आया है या मरकर? अजगन्य स्थितिबंध का जगन्य काल दो समय कम 10,000 वर्ष। अभी क्या किया, अजगन्य स्थितिबंध है तो उसमें जिसने जगन्य किया है ऐसा जो लिया, ये जरूरी नहीं कि सभी जीव जगन्य करें, कोई असंगी में से आया ही नहीं है, वो थ्रू आउट अजगन्य ही रहा, ये हो सकता है। पर हमको अजगन्य का काल कम से कम लेना है, तो पहले दो समय में उसको जगन्य कराया और नरक की कम से कम आयु ली, तो 10,000 वर्ष में दो समय कम कर दिया। और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, पूरा नरक में रहने का अजगन्य ही किया उसने 33 सागर। इसी प्रकार पहली पृथ्वी में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है अजगन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। वहां दो समय अपने उत्कृष्ट स्थिति में से, उत्कृष्ट काल वो दो समय भी नहीं घटा, डायरेक्ट उसको अजगन्य ही कराना, पहली पृथ्वी का उत्कृष्ट काल
आपने बताया दो समय कम करना। हाँ एक जीव की तरह बात कर रहे, इसलिए अगर नाना जीव की तरह बात करते
तो अजगन्य हमेशा होगा,
10,000 वर्ष हो जाएगा।
कैसे होगा? नाना जीवों की अपेक्षा सदा काल होगा। आप क्या घोटाला कर रहे हैं? नाना जी ने वो कह रहे हैं एक जीव की अपेक्षा ये हुआ, नाना जीवों की अपेक्षा क्या होगा? तो नाना जीवों की अपेक्षा अजगन्य करने वाले हमेशा ही पाए जाएंगे,
जगन्य वाले नहीं,
जगन्य वाले हो सकते, उसमें अंतर हो या काल हो, लगातार असंगी से में आने वाले है उसको हम जगन्य में काल घटा कर, अजगन्य तो हमेशा ही पड़े रहेंगे।
नहीं, जैसे कोई असंगी से नहीं आया जगन्य पूरा 10,000 वर्ष रह सकता,
अजगन्य रहेगा तो जगन्य कैसे रहेगा? आपको अजगन्य कहना तो केवल 10,000 वर्ष का रहेगा कि वो 33 सागर वाले भी अजगन्य करते रहेंगे, सभी नरकों के असंख्यात नारकी है वो अजगन्य कर रहे ना, तो नाना जीवन की अपेक्षा तो सदा काल होगा अजगन्य का, वहाँ सवाल ही नहीं कोई। ख्याल में है ना आपके प्रश्न का उत्तर?
थोड़ा
गड़बड़ अभी गड़बड़ी ठीक हो गई है। अच्छा है, चलो आगे। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं तक काल की प्ररूपणा उत्कृष्ट के समान, यानी जगन्य स्थितिबंध एक समय और अंतर्मूल, क्योंकि यहां कौन सा लेना, सर्व विशुद्ध लेना, जगन्य स्थितिबंध समय दृष्टि वहाँ भी जो स्थिति बंध का जो है लगातार वही तो वो कह रहे हैं उत्कृष्ट के समान है। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी में अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। देखो विशेषा जो तत्प्रायोगिक विशुद्ध परिणाम वाला असंगी जीव मरकर नरक में उत्पन्न होता है उसके एक या दो समय तक सात कर्मों का जघन्य स्थितिबंध होता है। इसी से यहाँ सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा। 10,000 वर्ष प्रमाण नरक की जघन्य स्थिति में से ये दो समय कम कर देने पर वहाँ अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल होता है। उत्कृष्ट काल 33 सागर है यह स्पष्ट ही है। पहली पृथ्वी की अपेक्षा यह प्ररूपणा इसी प्रकार है। कौन सी वो असंगी से आता है इसलिए इसी प्रकार है कारण कि असंगी जीव पहली पृथ्वी में ही उत्पन्न होता है। मात्र यहाँ अजघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट काल यहाँ की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण कहना चाहिए। पहले नरक की बताना है तो एक सागर कहेंगे। शेष पृथ्वियों में जघन्य स्थितिबंध के काल का विचार उत्कृष्ट स्थितिबंध के काल के समान कर लेना चाहिए। देखो देखो नारकियों में उत्कृष्ट की बात देखो
तो
क्या कहते हैं
ये
अजगन्य का जगन्य का
अजगन्य
हाँ देखो उसकी विशुद्धि हुई यथा योग्य हाँ सातवीं पृथ्वी में उन्होंने ये विशेषता बताई है। अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य काल अंतर्मुक्त है तो अन्य पृथ्वियों में उन्होंने एक समय घटित किया देखो उन्होंने क्या बताया कि उत्कृष्ट के समान है। यह क्या बताया दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं तक काल की प्ररूपणा उत्कृष्ट के समान है। उत्कृष्ट में हमने क्या देखा था एक समय देखा था ना देखो स्वामित्व देख लो जगन्य का स्वामित्व देख लो नरक में संयत समय दृष्टि सर्व विशुद्ध परिणाम वाला इतना ही लिया हाँ यहाँ तो अंतर्मूर्त तक मिथ्यात्व में रहेगा ही ये अपेक्षा है। अन्य नरकों में सम्यक्त से गिरकर या सम्यक्त के साथ भी चला जाता है या मिथ्यात्व में तो अंतर्मूर्त रहेगा ही। वहाँ सात साधन में मरेगा ऐसा एक समय लेना पड़ेगा मिथ्या तो में आते ही एक समय में मरेगा छठे नरक तक
गले में प्रणाम शव
के विषय योजना के बाद तत्काल मरता नहीं है ना। कौन सा
करेगा उसके
पश्चात योजना के अंतिम समय में लेना है या फिर उसको शासन में ले आना
स्वामी के लिए
उन्होंने सर्व विशुद्ध इतना ही लिखा है, उसमें विषय योजना का नाम नहीं लिखा है, सर्व विशुद्ध परिणाम वाला इतना ही लिखा है। विषय योजना वाला तत्काल मरना नहीं होता,
अंतिम समय
एक समय पहले एक समय के लिए अगर
समय के साथ निकल सकते हैं, बाकी यहाँ निकलता नहीं।
सातवें नरक में क्या होता है? अजगण्य काल, जगण्य काल अंतर्मूर्त है क्योंकि वो मिथ्या तो में अंतर्मूर्त तक रहता है। अब तीरियन चौमे मिला, चौपन पृष्ठ पर है, हम नीचे से दूसरा पढ़ेगा। सात कर्मों के जगण्य स्थितिबंध का जगण्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। जो उत्कृष्ट का है वैसे यहाँ लागू होता है। ये किसके होगा अब याद है क्या? हाँ मंजू, हाँ मिथ्या दृष्टि एकेंद्रिय को बादल एकेंद्रिय पर्याप्त को बादल एकेंद्रिय पर्याप्त एक समय नहीं जिसको कुछ होता है परंतु जगन्य किसको होता है? बादल एकेंद्रिय पर्याप्त को होता है। सर्व विशुद्ध वाले को भी अंत कोड़ा कोड़ी होगी। अब अजगण्य स्थितिबंध का जगण्य काल एक समय है यानी वो तीर्यंच से मरकर अन्यत्र चला गया। तीर्यंच में था, जगण्य स्थितिबंध किया बाहर एकेंद्र ने एक समय के लिए, फिर अजगण्य किया मरकर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। ओग में तो क्या देखा था हमने? अंतर्मूल देखा था ना ओग में, अजगण्य का तो अंतर्मूर्त देखा था। तो यहाँ अजगण्य का एक समय कैसे घटित हुआ? तो अजगण्य एक समय के लिए किया मरकर मनुष्य हुआ। मनुष्य में क्यों पैदा करना? विशुद्धि के कहाँ सवाल है? बोलो ये तीर्यंच में जगन्य कौन करता है? तो बादर एकेंद्रिय। तो मरकर कहाँ जा सकता है? या तो तीर्यंच में या मनुष्य में। तीर्यंच में जाएगा तो मार्गणा बदलेगी नहीं, तो मार्गणा बदलने के लिए उसको मनुष्य में भेजना चाहिए। अजगण्य का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। जैसे हमने अनुत्कृष्ट का भी देखा था, क्या कहा हमने? एक इंद्रियों में जो एक बार उत्कृष्ट किया तो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक अनुत्कृष्ट करता रहा, बाद में उत्कृष्ट करेगा ही। तीर्यंचों में देखा था हमने, ऐसे ही जगन्य के बाबत रूल है। एक बार जगन्य किया तो बीच में असंख्यात लोक प्रमाण काल तक लगातार लंबे काल तक अजगन्य किया तो फिर जगन्य होगा ही उसका, ये बात कहना चाहिए। असंख्यात लोक प्रमाण काल ये उत्कृष्ट काल की बात। पंचेन्द्रिय तीर्यंच त्रिक में मेरा आपसे सवाल है, एकेंद्रिय में जघन्य किया बराबर, अब वो पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ और लगातार पंचेंद्रिय में रहा, तो वो काल बड़ा होगा क्योंकि उसको फिर दोबारा जघन्य करने के लिए एकेंद्रिय में जाना ही पड़ेगा। कम है, कितना है? पंचेंद्रिय तिरंच, पंचेंद्रिय तिरंच में रहने का पूर्व, तो फिर और वो तीन पल्ले वाले मत करना, नहीं तो दो में चला जाएगा। हमको उसको तिरंच में ही रखना है, तो फिर वापस आएगा एकेंद्रिय में और फिर जघन्य करेगा। उसका कितना होगा और जघन्य का काल, वो सब उसमें इंक्लूड हो गया, फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण में वो जघन्य करेगा ही करेगा। यानी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में आया तो भी जघन्य करने के लिए उसको फिर असंख्यात लोक प्रमाण काल में एकेंद्रिय में जाएगा ही जाएगा।
ये बात समझ नहीं है, ये तो समझ 96 कोटि तो हो गया उसका, तो बहुत अच्छा ठीक है।
देखो ये है, मेरा ऐसा सवाल था, जघन्य कौन करता है तिरंचो में? एक केंद्रीय करता है, बादर एक केंद्रीय पर्याप्त करता है, उसने एक बार जघन्य किया, असंख्यात लोक प्रमाण काल में वो दोबारा जघन्य करता ही करता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो एक केंद्रीय में रहे, पंचेंद्रीय में घूम के आए तो भी, क्योंकि पंचेंद्रीय में तो छोटा काल है, कितना है तो 96 पूर्व कोटि का है, तो इसलिए कहते हैं यानी वो बाकी भी त्रस में जाके आया तो भी वो काल छोटा है, असंख्यात लोग के सामने वो कुछ नहीं है। यानी एकेंद्रिय को छोड़कर मान लेते त्रस में गए, कितना है? साधिक दो सागर, वो दो पूरे साधिक दो सागर भी लेते हैं तो असंख्यात लोग बड़ा है क्या? 2000 सागर बड़ा है, क्योंकि हमने देखा था अंगुल के असंख्यात वे भाग में असंख्यात असंख्यात कल्प काल चले जाते हैं। यहाँ तो मात्र 2000 सागर की बात है और वो तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की बात है, और ये भी असंख्यात असंख्यात, तो असंख्यात लोक काल कितना बड़ा होगा। यानी वो दोबारा एकेंद्रिय में चला ही जाएगा और जघन्य बंद करेगा ही करेगा। ओघ में इसलिए नहीं लेते हैं कि ओघ में तो एक बार जघन्य हो गया तो वो जाएगा मोक्ष, तो उसका जघन्य का सादी शांत काल कैसे? जिसने उपशम श्रेणी चढ़ी उसकी अपेक्षा से, अदरवाइज उसका अजघन्य ही चलता रहे। तिरियंच में वो मार्गणा है, मार्गणा तो उसका आदि अंत होता है, इसलिए इसमें ये काल घटित होता है। तिरियंचो में असंख्यात लोग ये काल घटित होता है। पंचेंद्रिय तिरियंच त्रिक में जघन्य स्थितिबंध का काल सामान्य तिरियंचों के समान है, और पंचेंद्रिय तिरियंच त्रिक जब कहेंगे तो काल की बात यहाँ चल रही है, कौन सी? एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुख। परंतु ये कौन करेगा अभी बताओ, पंचेंद्रिय तिरियंच त्रिक में जघन्य किसके होगा? एक इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला विग्रह गति में जो है, परंतु यहाँ क्या लिखा? एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है,
जगह कितना होगा?
पंचेंद्रिय तिरियंश त्रिकिया ने कौन से है पंचेंद्रिय तिरियंश पर्याप्त, यानी पहले पंचेंद्रिय तिरियंश, पंचेंद्रिय तिरियंश पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिरियंश योनिमति, पंचेंद्रिय तिरियंश लेंगे हम तो असंगी को भी लेना पड़ेगा वहां। ये तिरियंशों के समान क्यों, यानी वो केवल काल की बात है, किसको होता है स्वामित्व की समानता नहीं है, एक समय और अंतर्मूर्त की समानता, समानता किसकी है एक समय और अंतर्मूर्त, परंतु आप कहते हैं नारकी के समान यहाँ भी ले लेना है ना, यही आप कह रहे हैं ना, एक इंद्रिय से आया है। पंचेंद्र के स्वामी तो निकालो,
बराबर है जो असंगी की दीक्षा हो जाएगा तो एक समय विग्रह गति में एक समय आया और अंतर्मूर्त तो वो असंगी पंचेंद्र है ना, तो उसमें असंगी भी अंतर्मूर्त तक वो जगह कर सकता है ना, एक समय विग्रह गति वाला या
एक समय तो कोई भी कर सकता है,
कोई भी कर सकता है और अंतर्मूर्त भी कर सकता है,
अंतर्मूर्त तो स्वयं ही असंगी है, यानी असंगी को लेना यहाँ।
असंगी कहाँ से, चालिंद्रिय वाला, योनि वाला, पंचेंद्रिय वाला,
कहीं से भी हो असंगी पंचेंद्रिय के समान सकेबंध होता है, एक इंद्रिय से आया हो या चतुरिंद्रिय से आया विग्रह गति में उसका स्थिति बंध असंगी के समान होता है, ये बात है। हाँ 25 पेज पर आई बात, 25 असंगी जीव मरकर नरक की बात आई थी वहां पर, यहाँ लिखा ना आगे चलकर, यद्यपि एकेंद्रिय जीव भी मरकर उत्पन्न होता है परंतु इन मार्गणाओं में उत्पन्न होने के बाद अपर्याप्त अवस्था में सात कर्मों का जगन्य स्थितिबंध असंगी के होने वाले स्थितिबंध से कम नहीं होता, ये तो हमने पहले भी देखा, अभी रुके ही हैं, इसका विशेष आप कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो